أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أما بعد. دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے پروگرام کو لے کر. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام اور عرض ادب پیش کرتا ہوں. جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلے پروگرام میں نظر کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، لہذا ہم اپنے وعدے کے مطابق آج آپ کے سامنے اسی سلسلے میں بات کریں گے. دوستو، نظر جو ہے آج دیکھیں اس زمانے میں تقریباً جو ہے وہ نظر کے دو معنی ہے، ایک تو نظر ماننا اور ایک نظر کرنا. نظر کرنا کیا ہے؟ نظر کرنا یہ کہ انسان نے کسی خوشی کے موقع پر، اہل بیت کی خوشی کے موقع پر، جو عام طریقے پر رواج ہے، وہ کھانے کا اہتمام کیا اور اس کے بعد کچھ دوستوں کو، کچھ اہل بیت کے چاہنے والوں کو، کچھ رشتہ داروں کو، کچھ ہمسایوں کو دعوت دی نظر چکھنے کے لیے، نظر کھانے کے لیے. جیسے جو ہے عام طور پر 13 رجب کو، 22 رجب کو اور 27 رجب وغیرہ کو نظر ہوتی ہے، یا بعض مقامات پر غدیر کو، 17 ربیع الاول وغیرہ کو نظر ہوتی ہے، 15 شعبان کو نظر ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ ہر جمعرات کو نظر اور فاتحہ کرتے ہیں، یعنی کسی کھانے پینے کا انتظام کرنا اور اس میں لوگوں کو دعوت دینا. ایک تو یہ جو آج عام طور پر آج کل نظر سے مراد لیا جاتا ہے، لیکن اصلی نظر جو ہے اور حقیقی نظر جو ہے، جو نظر کے اصلی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کام کو اپنے اوپر واجب کرنا، کسی نئے کام کو اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرنا کہ اگر میری یہ حاجت پوری ہو گئی تو میں یہ کام انجام دوں گا، اگر ایسا ہو گیا تو میں یہ کام انجام دوں گا، اگر میری جاب لگ گئی تو میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اگر ہمارا جو مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی کسی کا کوئی بیمار ہو اور کوئی رشتہ دار، اور وہ یہ نظر کرے کہ اگر ہمارے فلاں رشتہ دار ٹھیک ہو گئے تو میں 2 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، اگر ہماری فلاں مشکل آسان ہو گئی تو میں 1 فقیر کو لباس دوں گا، اگر ہماری فلاں کام حل ہو گیا تو مثال کے طور پر میں 2 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اگر جو ہے میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو مثلا نظر کرے کہ قرآن کا 1 سورہ پڑھوں گا، مثال کے طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کروں گا، یا مثال کے طور پر چند کتابیں خرید کر مومنین کے درمیان تقسیم کروں گا تاکہ وہ اس سے دعائیں پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں، علم حاصل کریں. اس طریقے سے اگر کسی نیک کام کی نیت کے ساتھ کسی نیک کام کو اپنے اوپر واجب کر لیں، اللہ کے لیے، اللہ ہونا چاہیے نیت میں، ریاکاری نہیں، تو اس کو جو ہے وہ نظر کہا جاتا ہے. یہاں پر نظر کے کچھ احکام ہیں. سب سے پہلے احکام بیان کرنے سے پہلے دوستوں کے سامنے میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے معصومین علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی رہا ہے. وہ نظر مانتے تھے، لیکن نظر میں نماز مانتے تھے، روزہ مانتے تھے، اور جب ان کے پاس لوگ اپنی پریشانیوں کو لے کر آتے تھے، اصحاب اور دوست ان کے، یاور انصار، تو آپ جو ہے ان کو دعائیں بتاتے تھے، قرآن کی سورے بتاتے تھے کہ فلا سورے کی تلاوت کرو، فلا نظر کر لو، یا غریبوں کو آزاد کرنے کی، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کہتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہتے تھے، اسی طریقے سے جو ہے وہ روزوں کے لیے کہتے تھے. اس طریقے کی نظر ہوتی تھی. مثال کے طور پر خود جب امام حسن اور امام حسین کی طبیعت خراب ہوئی ہے، یہ بعض روایت کے مطابق امام حسن کی طبیعت خراب ہوئی ہے، تو پیغمبر اسلام عیادت کے لیے پہنچے، بچوں کے حال کو دیکھا، بچے بہت بیمار تھے، پریشان تھے. مولا کائنات سے کہا، یا علی تم نظر کر لو کہ اگر ان بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی तो मैं 3 रोज़े रखूँगा। मौला कायनात ने नज़र की, बीवी फातिमा ने नज़र की, जनाब फिज़ा ने नज़र की। कोई पूछने के लिए आता था, अपनी परेशानी को बताने के लिए आता था, तो उसको सूरे बताए जाते थे कि फ़ला सूरे को पढ़ो, 2 रकत नमाज मान लो, फ़ला सूरा मान लो, इस तरीके की चीज़ें बताई जाती थी। लिहाजा हम जो कि अहले बैत की मोहब्बत के दावेदार हैं दोस्तों, खुदा की कसम अल्लाह के वास्ते गौर करें, फ़िक्र करें, हम कहाँ चले जा रहे हैं। कहीं सिर्फ हमारा ज़बानी दावा ना रह जाए कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, बल्कि उनसे मोहब्बत करने के लिए उनकी सीरत पर अमल करना ज़रूरी है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारी मोहब्बत और हमारी सीरत पर अमल करना दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती। अगर कोई ये कहे कि मोहब्बत तो करता है लेकिन अमल नहीं है, तो हकीकत यह है कि मोहब्बत भी नहीं करता है। यानी जहाँ होंगी वहाँ दोनों होंगी, जहाँ एक ना होगी वहाँ दूसरी भी नहीं है, वलो ये कि ज़ाहिरन नज़र आती रहे। लिहाजा मेरे अजीज़ों, दुनिया मुश्किलात में गिरफ़्तार है, हम भी परेशानियों में मुब्तला हैं, मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं, हर इंसान के सामने परेशानियाँ और मुश्किलात हैं। लिहाजा जब हम कोई नज़र माने तो अहले बैत के तरीक़े पर नज़र माने, नमाज माने, रोज़ा माने, कुरान की सूरतें माने, दुआएं जो अहले बैत से वारिद हुई हैं वो नज़र के तौर पर माने, इसी तरीके से गरीबों को खाना खिलाने की नज़र करें, फ़कीरों को लिबास पहनाने की नज़र करें। लेकिन हम जो है आज आमतौर पर क्या नज़र करते हैं, 16 सैयदों की कहानी, चटपट बीबी की कहानी, और न जाने किसकी कहानी, लोहार की कहानी, जबकि तारीख़ के एतबार से इन कहानियों की कोई सनद नहीं पाई जाती है। रही बात बीबी सैयदा की कहानी की, तो बीबी सैयदा की कहानी में जो बीबी सैयदा का वाकया है कि आप यहूदियों के यहाँ गईं, और यहूदियों के यहाँ जाने के बाद जो है वो वाकया पेश आया, सब बेहोश हो गए, और फिर आपने दुआ की तो सब होश में आ गए, दुल्हन भी होश में आ गई, और फिर दुल्हन जो है ईमान ले आई, 2 रकत नमाज आपने पढ़ी। सबसे पहले तो देखिए कि वहाँ भी आपने नमाज पढ़ी, दुआ की है। दूसरी चीज़, उससे पहले जो उसमें चीज़ें बयान की जाती हैं कि फ़लाँ ने वो उनकी कहानी सुनना भूल गया, तो उसका बेटा मर गया, उसका घोड़ा खो गया, और बादशाह की लड़कियों की शादी हुई तो वहाँ से महल का सामान गायब हो गया, लोटा सांप में बदल गया, और वो जो है वो ज़मीन में धंस गए, उसके बच्चे जो हैं वो पत्थर के बन गए, उसके जो है वो महल में आग लग गई। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ ऐसी निस्बत देना हराम है। जनाब ज़ैनब करबला के वाक़े के बाद फरमाती हैं, मा रअईतु इल्ला जमीला, मैंने जो भी कुछ देखा वो बेहतर देखा, अल्लाह की रज़ा यही थी, अल्लाह यही चाहता था, तो मैंने जो भी देखा वो अच्छा देखा। यानी और ख़ुद इमाम हुसैन खंजर सर के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बददुआ नहीं की, बल्कि कौम के लिए दुआ कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, वो तो कभी भी उम्मत का बुरा नहीं चाहते, फिर उनसे कैसे ये तसव्वुर किया जा सकता है कि अगर कोई उनकी कहानी सुनना भूल जाए तो बच्चे मर जाएंगे, बच्चे पत्थर के हो जाएंगे, और घर में आग लग जाएगी, घोड़ा गायब हो जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अहले बैत मुश्किलात हल करने के लिए हैं, मुश्किलात में गिरफ़्तार करने के लिए नहीं है। लिहाजा दोस्तों, बेदार होने की ज़रूरत है। मैंने अहकाम से पहले ये मुकदमा इसलिए बयान किया, नज़र ऐसी करें जो हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम करते थे। चुनांचे जो है वो यहाँ पर अब मैं आपके सामने नज़र के कुछ अहकाम बयान कर रहा हूँ। सबसे पहला हुक्म ये है, सबसे पहला मसला ये है कि जब हम कोई नज़र करना चाहते हैं किसी नेक काम की, तो उसमें जो है वो सीगा ज़रूरी है, और सीगे के लिए ज़रूरी नहीं है कि अरबी ज़बान ही में पढ़ा जाए, बल्कि उसको जो है वो अपनी ज़बान में भी पढ़ सकते हैं। चुनांचे इस तरीके से अगर किसी के यहाँ कोई बीमार है, वो ऐसे कहे कि अगर हमारा मरीज़ शिफा पा जाए और सही हो जाए और सालिम हो जाए, तो मैं खुदा के लिए 100 रुपये फ़कीर को दूंगा, या खुदा की तरफ से मेरे ऊपर ये लाजिम है, मैं अपने ऊपर ये अहद करता हूँ कि मैं एक फ़कीर को लिबास दूंगा। तो इस तरीके की नज़र सही है, यानी अरबी ज़बान में होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि फ़ारसी में, उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में, मराठी में, तमिल में, जिस ज़बान में भी आप करना चाहें, जिस ज़बान के बोलने वाले हैं, जिसको इस्तेमाल करने वाले हैं, उस ज़बान में नज़र का सीगा पढ़ा जा सकता है। दूसरा मसला ये है कि नज़र करने वाला जो है उसकी कुछ शराइत हैं। सबसे पहले तो ये कि वो मुकल्लफ होना चाहिए, नज़र करने वाला मुकल्लफ होना चाहिए। यानी क्या, यानी शरीयत के अहकाम उस पर वाजिब हों, यानी बालिग हो चुका हो और आकिल हो यानी अक्ल रखता हो और दीवाना ना हो। इसके बाद जो है दूसरी शर्त यह है कि अपने इरादे से नज़र करे और अपने इख्तियार से नज़र करे। और इसके बाद जो है अगर इंसान बग़ैर इरादे के यानी कोई उसको मजबूर कर देता है कि तुम ये नज़र मानो और वो नज़र मान लेता है, ज़बान से अल्फाज भी अदा कर देता है, तो ये नज़र सही नहीं है और उस पर कुछ वाजिब नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और गुस्से की हालत में वो नज़र कर लेता है, यानी इतना गुस्सा है कि अब वो अपने कंट्रोल में नहीं है, इख्तियार में नहीं है, उस वक्त अगर कोई नज़र करता है तो उस नज़र का भी कोई एतबार नहीं है और उस पर कुछ वाजिब नहीं होता है। दोस्तों एक बार एक बात ये और कह दूँ कि नज़र जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से नज़र करें कि अगर मेरी फला मुश्किल हो जाए तो मैं ये काम अल्लाह के लिए करूँगा, बल्कि अगर कोई मुश्किल कोई हाजत ना हो तब भी नज़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अल्लाह के लिए आज से ये नेक काम अंजाम दूंगा या मैं अल्लाह के लिए आज से फला बुरे काम को छोड़ दूंगा, लेकिन जब ये अपने ऊपर वाजिब कर लेता है और इरादे और इख्तियार के साथ ये नियत कर लेता है और बात जो है वो तय कर लेता है अपने आप से अपने और अल्लाह के दरमियान, तो फिर नज़र वाजिब हो जाती है और नज़र के मुताबिक अमल करना उस पर ज़रूरी है। तीसरा मसला ये है कि नज़र जो है वो शोहर की इजाज़त के बग़ैर नहीं की जा सकती, यानी अगर कोई औरत शोहर की इजाज़त के बग़ैर कोई नज़र करे, मिसाल के तौर पर नज़र करे कि आज से मैं अल्लाह के लिए ये काम अंजाम दूंगी, फलाने काम को अंजाम दूंगी या फला बुरे काम को छोड़ूंगी, तो बग़ैर शोहर की इजाज़त के नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर नज़र करे कि मैं कल को अल्लाह के लिए रोज़ा रखूंगी, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए, तो ये बग़ैर शोहर की इजाज़त के नहीं कर सकते, यानी शोहर की इजाज़त ज़रूरी है। लेकिन बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि अगर औरत ऐसी नज़र कर रही है कि जिसमें शोहर का हक मारा जाए, मिसाल के तौर पर ये नज़र करे कि मैं फला दिन का रोज़ा रखूंगी और शोहर उससे राज़ी ना हो, तो ये रोज़ा नहीं रख सकती और इसकी नज़र जो है वो बातिल है और इस पर कोई चीज़ लाजिम और ज़रूरी नहीं है, यानी ना रोज़ा रखना ना उसका कफ़ारा देना। लेकिन अगर ये नज़र करती है कि मैं 10 फ़कीरों को खाना दूंगी और इसके पास जो पैसा भी है, यानी खुद बीवी के पास अपना पैसा मौजूद है और इसमें शोहर के हक की कोई हक तलफी नहीं हो रही है, शोहर की कोई मुखालफत नहीं हो रही है, तो ऐसी सूरत में शोहर की इजाज़त ज़रूरी नहीं है बाज़ फुकहा के नज़दीक। बाज़ फुकहा ने कहा कि सब में मुतलकन इजाज़त की ज़रूरत है, लेकिन बाज़ कहते हैं कि अगर शोहर की हक तलफी हो रही है तो इजाज़त की ज़रूरत है, अगर हक तलफी नहीं हो रही है तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इस मसले में जो है वो तमाम दोस्तान अपने अपने मर्ज तकलीद की तरफ रुजू करें कि उनका फतवा क्या है। उसके बाद चौथा मसला यह है कि इंसान जो है वो सिर्फ ऐसे कामों की नज़र कर सकता है जो मुमकिन हो, जिनको अंजाम दे सकता हो, किसी ऐसे काम की नज़र सही नहीं है जिसको इंसान अंजाम ही ना दे सकता हो। मिसाल के तौर पर इंसान रोज़ा रख सकता है तो रोज़े की नज़र कर ले के मैं रोज़ा रखूँगा, लेकिन ये इंसान जो है सफ़र पर गया हुआ है 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए सफ़र पर गया हुआ है और वहाँ सफ़र में नज़र कर ले कि कल को मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रखूँगा, मुस्तहब रोज़ा रखूँगा, तो चूँकि इंसान रोज़ा रख ही नहीं सकता है सफ़र में, सफ़र में जो है वो रोज़ा नहीं रख सकता है, लिहाजा यहाँ पर इसकी नज़र सही नहीं है। या अगर कोई इंसान जो दूर दराज का रहने वाला है, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ से मिसाल के तौर पर जो है वो मक्के तक पैदल नहीं जाया जा सकता है, आजकल के ज़माने में वो हुकूमती सियासतें जो है वो इजाज़त नहीं देती हैं कि आम तौर पर जो है वो, और ख़ुद ऐसे भी जाना सख्त है, लेकिन जो है वो आज अकल आम तौर पर जो है वो ऐसे भी ज़ाहिरन इजाज़त नहीं है कि पैदल जाए, बल्कि जो है वो बॉर्डर से गुजरते हुए और बाज़ औक़ात तो बाज़ जगहों में ऐसा है कि जहाँ ज़मीनी रास्ता ही नहीं है बल्कि समंदर से गुजर कर जाना है तो वहाँ पर जहाज़ ज़रूरी है, लिहाजा जहाँ से इंसान हज पर पैदल ना जा सकता हो वहाँ से इंसान ये नज़र करे कि मैं पैदल हज करने के लिए जाऊँगा, तो चूंकि वो अंजाम ही नहीं दे सकता है, नहीं जा सकता है, लिहाजा उसकी नज़र भी सही नहीं है। एक बार फिर आपके सामने इस मसले की तकरार एक जुमले में कर देता हूँ और वो ये कि नज़र जो है सिर्फ ऐसे कामों में की जा सकती है जिनका अंजाम देना मुमकिन हो। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम होता है। अभी नज़र के अहकाम और बाकी हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उनको आपके सामने बयान करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।